جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، شلہ نام سے آئی ہوئی ہیں، یہ انمیوٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو آپ پلیز اپنے مائک کو میوٹ کیجئے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے گھر کی آوازیں ہمیں آئیں گی جو ہم نہیں سننا چاہتے. جزاکم اللہ. تو آیت نمبر 21 اور 22 ان کی تفسیر ہم کل پڑھ رہے تھے معرف القرآن سے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو اس کا ترجمہ بیان القرآن سے نقل کیا، یعنی ترجمہ تو خیر نہیں، خلاصہ تفسیر بیان القرآن سے نقل کری، اور اس میں جو پہلی آیت تھی تو اس کے تحت فرمایا تھا کہ یہ جو ہے نا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان سے خطاب کریں. تو یہ جو ایک انسان کے اندر یہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، خالی ڈیزائر نہیں بلکہ اس کے لیے ڈیمانڈ کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب لگتا ہے، کہ مجھ سے بڑے ڈیل کریں، مجھ سے بڑے ڈیل کریں. چھوٹے کیوں ڈیل کر رہے ہیں مجھ سے؟ ٹھیک ہے، میں چھوٹے کا حکم کیوں مانوں؟ میں تو ہائیسٹ اتھارٹی سے ڈائریکٹ ڈیل کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک ہمارے اندر ایک یہ طلب ہوتی ہے یا ڈیزائر ڈیمانڈ کی شکل میں ہوتی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرما رہے ہیں؟ یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. استکبروا فی انفسہم، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کے اپنے جانوں کے اندر، اپنے نفس کے اندر یہ تکبر ہوتا ہے، یہ نفس کا تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آئی شوڈ بی ایڈریسڈ بائی دا موسٹ سینئر اتھارٹی، آئی شوڈ گیٹ مائی آرڈرز ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی فرام دا موسٹ سینئر اتھارٹی، تب تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. میں چھوٹوں کی نہیں مانوں گا، میں جو انٹرمیڈیری لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کی نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ نفس کا تکبر ہوتا ہے. ہمارے دین میں بھی بالکل وہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایکچولی لفظ جو ہے نا یہ ذرا نیگیٹو لفظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں استعمال کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے، کیونکہ اس لفظ کے اندر بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے بغیر آتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ یہ ایک بے ادبی والی ٹرم استعمال کر کے اصل مقصد سمجھانا مقصود ہے. وہ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بیوروکریسی. اب بے ادبی ایکچولی یہ ہے بھی نہیں ان اے سینس، بیکاز بیوروکریسی جو ہے نا یہ تو ایک نظام کو چلانے کے لیے ایک اسینشل طریقہ ہے. وہ تو ہمارے ملک کے اندر اس کو جو ہے وہ کرپشن کا ایک سلسلہ بنا دیا گیا نا، رائٹ. ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی ہے وہ کہ ایکچولی انگریز سے ہم نے وراثت میں لی ہے، رائٹ. یہ ڈپٹی کمشنر، یہ اے سی، اور یہ فلانا اور ڈھمکانا، گریڈ 10 کا دفتر، کیا گریڈ 10، گریڈ 18 کا آفیسر ہے، اور گریڈ 19 کا آفیسر ہے، گریڈ 21 کا آفیسر ہے، رائٹ. یہ بیوروکریسی، تو یہ ہمارے یہاں پھر یہ کرپشن، کیونکہ یہ 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 جو بیوروکریسی کے اندر جو لوگ آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، ان کی ذہن سازی، دل سازی کدھر ہوتی ہے؟ انگریز کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام کے اندر، جس کے اندر خدا کا اور آخرت کا تصور نہیں ہوتا، جو کہ دہریت اور الحاد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تعلیمی نظام. تو اس میں سے تو ایسی ہی بیوروکریسی بن کر کے آئے گی نا، رائٹ. وہاں سے آپ کو فرشتے تو نہیں ملیں گے، ایمان والے تو نہیں ملیں گے اس کے اندر آپ کو، ہیں،
खुदा का खौफ रखने वाले तो उसके अंदर से नहीं मिलेंगे ना, तो फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी बन गई है। लेकिन मुल्क का निजाम चलाने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी लाजमी है। ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो है वो तो मदीना मुनव्वरा की रियासत मदीना के अंदर भी था। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो गवर्नर बना करके भेजते थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अपने नायब बना करके भेजते थे, राइट। डायरेक्ट तो नहीं नबी अलैहिस्सलाम हर जगह करके जो है वो यमन के अंदर भी हुक्म फरमा रहे हैं और शाम के अंदर भी हुक्म फरमा रहे हैं, अपने नायबीन को भेजा जाता था ना, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ना, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, जो कि जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिस्टम को लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इस तरह के जो काम होते हैं ना, उनके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल वाला सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है ना। ये बाईपास वाला सिस्टम जो है ना वो इस तरीके से नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करके जो चीज अल्लाह ताला ने रखी है वो भी इस सिस्टम के अंदर है, दुनियावी सिस्टम के अंदर भी वो है। वो क्या है कि जब आपको कोई दाद रसी की जरूरत पड़ती है, दाद रसी समझते हैं ना, राइट। जब आपको जो है वो कुछ यानी अपने दिल की बात कहनी होती है, आपको जो है वो कभी किसी की शिकायत लगानी पड़ती है, राइट, किसी की शिकायत लगाने के लिए, या किसी की जो है वो आप यानी वो बात आपकी समझ में नहीं रहे हैं, तो आपको मामले को फिर एस्केलेट करना पड़ता है। एस्केलेशन भी समझते हैं सारे माशाल्लाह कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, एस्केलेशन को समझते हैं ना। तो जब आपको एस्केलेट करना पड़ता है ना, तो उस वक्त जो है वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसकी ओपन डोर पॉलिसी है, वो डोर्स बंद नहीं करता, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने डोर्स बंद नहीं करता, अपने दरवाजे बंद नहीं करता, उसके यहाँ ओपन डोर पॉलिसी है। इसको कहते हैं दुआ करना, दुआ करना। दुआ जो होती है वो किसी इंटरमीडिएटरी अथॉरिटी से नहीं मांगी जाती, राइट, किसी शेख से, किसी पीर से, किसी उस्ताद से, किसी रसूल से दुआ नहीं मांगी जाती, दुआ डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगी जाती है, ठीक है ना। उसी तरह से दिलों का हाल, ये भी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, ये भी किसी इंसान को नहीं दिया, चाहे वो रसूल ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा जो है वो मुत्तकी परहेज़गार इंसान क्यों ना हो, दिलों के हाल की जो नॉलेज है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखी है, जिसको नीयत कहते हैं। तो इसी तरीके से नीयत का जो मामला है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ होता है, ठीक है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, जो इल्म वाले मामलात होते हैं, जिसको एक्वायर्ड इल्म कहते हैं, हासिल करने वाला इल्म, राइट, ये हासिल करने वाला इल्म जो है ना, ये डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते मैं अल्लाह से सुनूंगा तो मैं अल्लाह से डायरेक्टली इल्म हासिल करूंगा और फिर मैं उसके ऊपर अमल करूंगा, नहीं। उसके लिए अल्लाह ताला ने मीडियरी लेयर्स बनाई हैं, और इस मीडियरी लेयर को जो क्रॉस करने की कोशिश करता है या इग्नोर करने की कोशिश करता है या ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, वो कौन होता है? इस्तकबरू फी अनफुसिहिम। बात समझ में आई सबको? कोई सवाल है, किसी को कोई इश्काल है इसके अंदर, तो मसले को क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, और जब कोई इस सिस्टम के खिलाफ करने की कोशिश करता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बहुत बुरी, सबसे जो खतरनाक रूहानी बीमारी, सबसे खतरनाक रूहानी बीमारी, ठीक है। बल्कि तो हमारे शेख उसके लिए एटमी बीमारी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तकब्बुर के लिए, एटमी रूहानी बीमारी। एटमी का मतलब क्या कि जो एटम बम होता है ना वो किसी चीज को नहीं छोड़ता, जबकि बाकी जो वेपन्स होते हैं, आप किसी को गोली मार देते हैं, कोई मिसाइल मार देते हैं, कोई जो है वो इस किस्म की और बम शम फेंक देते हैं, तो उससे कुछ चीजें तबाह होती हैं, कुछ चीजें रह भी जाती हैं, राइट। लेकिन एटॉमिक वेपन जो है ना वो फिर सब कुछ खत्म कर देता है, एनाइहिलेट कर देता है हर चीज को। तो तकब्बुर एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो कि हर चीज को एनाइहिलेट कर देती है, फिना कर देती है हर चीज को, इंसान की नेकियों को, राइट, इंसान के पूरे सिस्टम को और मुआशरती सिस्टम को भी ये खत्म करके रख देती है, ठीक है। तो इसके साथ फिर हम मारफो मसाइल, फिर जो कल हमने छोड़ा था जहां पर, वहां से शुरू करते हैं कि आजकल जो तालीम जदीद के असर से इस्लाम और उसके अहकाम के बारे में बहुत से लोग शुबहात और बहस व मुबाहिसे में मशगूल नजर आते हैं, ये भी अलामत इसकी होती है कि माज अल्लाह दिल में आखिरत का सच्चा यकीन नहीं है, और ये होता तो इस किस्म के फजूल सवालात दिल में पैदा ही नहीं होते। ٹھیک ہے, کیونکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی کتاب کے آغاز میں ان کو ڈسکرائب کر دیا ہے نا, ہے نا, سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین, ایمان والوں میں بھی جو جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں جن کو متقین کہا جاتا ہے, ہدل للمتقین, یہ قرآن کی جو کتاب ہے اس سے توفیق ملتی ہے. یہاں پر ہدایت کا مطلب توفیق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ توفیق کا سبب بنتی ہے متقین کے لیے, الذین یؤمنون بالغیب, جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں, وہ یقیمون الصلاۃ, اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں, رائٹ, وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے, رائٹ, اپنی عقلوں سے جو انہوں نے نہیں کمایا ہوتا, انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور اپنی محنتوں سے رزق کو نہیں کمایا ہوتا, بلکہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے, ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی محنتوں اور اپنی انٹیلیجنس اور اپنی ذہانت کے اوپر اس رزق کو میجر نہ کرنا شروع کر دینا کہ میں نے اپنی عقل مندی سے اس کو کمایا ہے اور باقی لوگ بیوقوف ہیں, ورنہ تم قارون جیسے ہو جاؤ گے. قارون کا یہی تو تھا نا, اس کے پاس کتنی دولت تھی لیکن بس اپنے ذہانت سے میں نے کمائی ہے دولت, تو تم بھی قارون جیسے ہو جاؤ گے. اس وجہ سے یاد رکھو, ٹھیک ہے, کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو ایمان لے کر کے آتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے والوں کے اوپر نازل کیا گیا, وہ انزل من قبلک, وبالآخرتی, اور آخرت کے اوپر یؤمنون, نہیں باقی ساری چیزوں پر یؤمنون لیکن آخرت کے اوپر وبالآخرتہم یوقنون, یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر. ایک کتنی مرتبہ یؤمنون کا لفظ استعمال کیا, ایمان بالغیب, تصدیق کر دیتے ہیں اپنے دل سے, زبان سے اقرار کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لے آئے. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, لیکن آخرت کے ساتھ ان کا معاملہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کا نہیں ہوتا, بلکہ یوقنون کا معاملہ ہوتا ہے ان کا آخرت کے ساتھ, یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر. یقین کس چیز کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں کہ کسی اندھی چیز کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد ہو جائے, اتنا زیادہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے گویا کہ آ جائے, حالانکہ نظروں کے سامنے نہیں ہے, حالانکہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, فیل نہیں کر سکتے, سونگ نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, رائٹ, سن نہیں سکتے اس کو, جہنم کی آواز کو ہم سن نہیں سکتے, جنت کی جو جو بھی وہاں پر ماشاءاللہ اچھی اچھی آوازیں ہوں گی ان کو ہم سن نہیں سکتے, لیکن آخرت کا تصور, آخرت کا معاملہ ایسے ہمارے لیے بن جائے کہ وہ گویا کہ ہمارے سامنے ہے, اس کو یقین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ تو آخرت کے ساتھ یقین کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے بحث و مباحثے کے اندر جو 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 شامل لوگ ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آخرت کے ساتھ یہ والا معاملہ ہے ہی نہیں ہمارا, رائٹ, جبھی تو وساوس ذہن کے اندر ہر وقت وساوس آتے رہتے ہیں, رائٹ, اور وساوس یعنی ایسے نہیں کہ کبھی آ گئے ہم نے جھٹک دیا, پھر کبھی آ گئے ہم نے جھٹک دیا, بلکہ اتنے آتے ہیں کہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ وساوس کے آماج گاہ بن جاتے ہیں, رائٹ, وساوس جو ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا آخرت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا حل کیا ہے نا وساوس کا؟ اس کا حل جو ہے نا وہ آخرت کے ساتھ اپنے اس یعنی اس ریلیشن شپ کو آخرت کے ساتھ بہت مضبوط کرنا, یہ اس کا حل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ اس مضبوط کرنے کے لیے بھی پہلے ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے, تو کیا فرمایا تھا پچھلے پیج کے اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ آخرت کا انکار کرتے تھے, جو کہ اصل میں یہ رسول کے انکار, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ بل کذبوا بالساعۃ, کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں, قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کی تکذیب یہ کیسے کرتے ہیں؟ امپلیسٹلی کرتے ہیں, امپلیسٹلی سمجھتے ہیں, رائٹ, explicitly ये किस चीज का इनकार करते हैं? आखिरत का ये इनकार नहीं करते, explicitly नहीं करते आखिरत का इनकार, explicitly यानी directly तो ये रसूल का इनकार करते हैं, ये रसूल की बातों का इनकार करते हैं, राइट? क्योंकि रसूल की बातों का इनकार करते हैं तो रसूल ही ने तो आकर के आखिरत के बारे में बताया है ना, तो इस वजह से ये आखिरत के भी मुनकर बन जाते हैं, राइट? लेकिन बात शुरू कहां से हुई? बात रसूल के इनकार की वजह से शुरू हुई, ठीक है? तो मसला सारा का सारा ये है कि हमने तो रसूल की बात को मानना है, रसूल हमें यानी बात समझाने की खातिर, रसूल हमें कहें उल्टे लटक जाओ बात समझाने की खातिर खाली, ठीक है? हमारे यहाँ चूंकि उल्टा लटक जाना जो है वो एक बड़ी मायूब सी बात समझी जाती है, ठीक है ना? यानी रसूल कोई मायूब से मायूब तर भी बात अगर करे ना, मान लो, उसको भी मान लो, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने माना था, राइट? कैसी मायूब बात फरमाई थी, कैसी मायूब, उस जमाने के हिसाब से क्या जबर, क्या मायूब बात थी कि जी रातों रात जो है ना मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस सैर करके आ चुके हैं और बैतुल मुकद्दस से भी ऊपर जा चुके हैं सातवों आसमान, और वहां पे भी जो है वो जन्नत भी देख ली, दोजख भी देख लिया, फलाना भी देख लिया, ढिमकाना भी देख लिया, राइट? तो क्या फरमाया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? अगर ये सब कुछ उन्होंने फरमाया है, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही, ठीक है? ये होता है एतमाद, राइट? और ये जो एतमाद है ना, ये एतमाद हम केपेबल हैं इस तरह से एतमाद करने, किसी के ऊपर इस तरह एतमाद करने के हम केपेबल हैं, हमारे पास सलाहियत है। ये नहीं है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो इतना मतलब ऐसा हूं कि मैं तो किसी पर एतमाद ही नहीं कर सकता। भाई दुनियावी मामलात में, बल्कि हम दुनियावी लोगों के ऊपर जिनके पास दुनिया की चकाचौंध होती है, दुनिया के ब्रांड्स होते हैं, राइट? जिनके हाथों के अंदर हमें दुनियावी जाहो मर्तबा नजर आता है ना, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम उनकी बातों पर आमन्ना व सद्दकना करते हैं, राइट? ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हमारे पास ये सलाहियत ही नहीं है कि हमें किसी के ऊपर एतबार कर सके, ठीक है? तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम मेरी निस्बत वालों के ऊपर एतमाद करो, जिनकी निस्बत मुझसे है, जिनकी जो कनेक्शन बनता है ना जाकर के, वो मुझसे बनता है, तो मेरी निस्बत की वजह से एतमाद करो लोगों के ऊपर, ठीक है? लेकिन हम जो है वो दुनिया की निस्बत से एतमाद करते हैं, और ये भी क्यों? क्योंकि हमारी जहन साजी की गई होती है, ठीक है ना? ये जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी दुनिया परस्ती की वजह से, जब अल्लाह ताला ने हमसे दुनिया का निज़ाम छीन लिया, मुसलमानों से, कुरान वालों से दुनिया का निज़ाम छीन लिया, तो काफिर मुसल्लत हो गए तलवार के जोर पर, बंदूक के जोर पर। जब काफिर मुसल्लत हो गए तो उन्होंने जो है ना फिर खाली ऐसे नहीं कि जी इनको बनी इसराइल की तरह डंडे मार मार करके, वो अकबर इलाहाबादी का शेर जो है वो याद नहीं रहता मुझे, पहले से लिख लेना कहीं से देख करके, ठीक है? कि वो फिरौन जो था ना, वो उसने खामखाई जो है बनी इसराइल के इतने लोगों को मारा, इतने बच्चों को उसने उसका उनका कातिल बना। अगर उसको कॉलेज की सूझ जाती ना, तो उसको इतने बच्चों को मारना नहीं पड़ता। अगर वो कॉलेज इस्टेब्लिश कर देता मिस्र के अंदर, बनी इसराइल वालों को जो है ना वो इस एजुकेशन सिस्टम के कॉलेजेस के अंदर भेजना शुरू कर देता, तो ये बनी इसराइल वाले जो है ना, ये अपनी मर्जी से उससे उसकी गुलामी करते, चाहत के साथ उसकी गुलामी करते, उसको इनको पकड़ पकड़ के मारना नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ मच दिस कॉलेज सिस्टम, दिस स्कूल सिस्टम इज केपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग आवर माइंड्स, चेंजिंग आवर माइंड्स, ठीक है? तो इसकी वजह काफिरों से मुतासिर और मरूबियत है, एतमाद ज्यादा है उन पर। जी मरूबियत और मुतासिर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो है, इन्होंने किसी ने मर्दों की तरफ लिखा है कि काफिरों से हम मुतासर और मरूबियत जो होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हमारे यानी हमारा उनके ऊपर एतमाद होता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जो नबी अलैहिस्सलाम ने डायग्नोस कर दी 1400 साल पहले। क्या है, क्या वजह है इसकी कि हम उससे उनसे मरूब हो जाते हैं, उनसे मुतासर हो जाते हैं? जरा अगर आपसे पूछ लें इसका जवाब, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या डायग्नोस किया था? यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है, यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। अगर आप व्हाट्सएप पे भी लिख करके मुझे भेज दें तो मैं अपने पास लिख लूंगा, क्योंकि ये शेर जो है कभी याद नहीं रहता, नबी किताब पे लिखने का वक्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायग्नोस कर दिया था, राइट, बिल्कुल सही फरमाया, हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, ये है असल वजह। तो हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत होगी तो भाई जिसके पास दुनिया होगी, जिसके पास खजाने होंगे, जिसके पास जो है वो लश्कारे होंगे, तो उसी से बंदा मरूब होगा ना, राइट। जिसके पास दुनिया की जो है वो लशपश होगी तो बंदा उसी से मुतासर होगा, उसी से मरूब होगा, और जब उससे मरूब होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एतमाद करेगा, राइट। और अगर आखिरत की फिक्र होगी, हुब्बुल आखिरत, राइट, हुब्बुल मौत, तो फिर किससे मरूब होगा, किससे मुतासर होगा, जिसके पास आखिरत का सरमाया होगा, जिसके पास नेक आमाल होंगे, जिसके पास सिद्क व दयानत होगी, उससे मरूब होगा, राइट। तो सारा मसला जो है ना वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एब्सोल्युटली बिल्कुल टू द पॉइंट बात फरमा दी, राइट, ये है असल वजह। तो हमें इसके इलाज की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो फरमा रहे हैं ना तालीम जदीद, तो तालीम जदीद के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, इन इंस्टीट्यूशन के अंदर हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत घोल के पिलाई जा रही होती है, घोल के पिलाई जा रही होती है, राइट। तो जब घोल के हमारे बच्चे पीते हैं, और हमने भी पी है, ठीक है, और हमारे अगली पिछली जो है वो दो नस्लों ने भी पी है अच्छी तरीके से, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो तालीमी निज़ाम है ना, इसने ऐसी जहनसाजी करी हुई है कि हमें फिर दीन के उलमा, मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन और फुकहा और शेखुल इस्लाम, इनकी बातों पर एतमाद नहीं है, इनकी बातें हम नहीं मानना चाहते हैं, राइट। इनकी बातों की बुनियाद पर ना हम अपने यानी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि हम जो है वो दूसरों की बातों के ऊपर पक्का एतमाद करते हैं, वो जो हमें पिला देते हैं हम बिल्कुल उनके ऊपर जो है ना वो एतमाद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जहनसाजी की गई है, ठीक है। तो इसके इलाज करने की जरूरत है। ये जो जो जिस एजुकेशन सिस्टम को हमने एम्ब्रेस किया हुआ है अपनी दुनिया की भी कामयाबी के लिए, और सो कॉल्ड हम जो मुसलमान बने हुए हैं, हमने अपनी आखिरत की कामयाबी भी इसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखी हुई है कि हम आखिरत में भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर ना बन जाए, राइट। यानी अच्छी तरीके से जो है वो दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर ना आ जाए। अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर बनना कोई हमारा दीन से मुखालफत नहीं करता, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं कि जी आप जो है वो हर चीज के ऊपर जो है वो उसको फोकियत देना शुरू कर दें। तो ऑल्टरनेट्स हैं। अब ये जो मैंने इतनी सारी तनकीद करी है ना इस एजुकेशन सिस्टम की, तो अब तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि सोल्यूशन भी इसके हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन इसके बहुत सारे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा ना अपने जरा जबर करके अपने ऊपर इसकी बुराई को पहले समझने की और मानने की जरूरत है, और फिर हमें अल्लाह ताला से सोल्यूशन मांगने की जरूरत है। जब अल्लाह ताला से सॉल्यूशंस मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर हमें ऐसे रास्तों के ऊपर चला देते हैं कि जिन रास्तों के ऊपर सॉल्यूशंस मौजूद हैं, अल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर, राइट। तो अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला को दिखाएंगे कि अल्लाह वाकई मैं जो हूँ वो इस निज़ाम से निकलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को निकालना चाहता हूँ, अल्लाह ताला देंगे अल्टरनेट सिस्टम्स, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए लाजमी शर्त यह है कि दिल से इस चीज को बुरा समझें और अल्लाह ताला से मदद मांगें। तो एक मिनट, आगे जो हिजर महजूरा की तफसीर लिखी है मारूफ मसाइल के अंदर, तो उसमें फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज हिजर है ना, हिजर के लफ्जी मानी महफूज जगह के हैं, यानी एक सिक्योर प्लेस। एतिकाद मीन्स द सेम एज एतिमाद, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक सवाल पूछा है कि एतिकाद मीन्स द सेम एज एतिमाद, नहीं, दे नॉट द सेम। एतिकाद का मतलब होता है किसी के साथ अकीदत रखना, ठीक है ना। ये लफ्ज उमूमी तौर पर अकीदत, यानी किसी को आप जरा अच्छी कुछ अहमियत दे रहे हैं, कुछ उसको किसी काबिल समझते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं उसके साथ आपको एतिकाद हो गया है, अकीदत हो गई है, ठीक है। लेकिन एतमाद जो है ना वो इतना आसानी से नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे नेक लोग होते हैं, राइट, उलमा में भी और मशायख में भी हमें उनके साथ एतकाद होता है, अकीदत होती है, राइट, हम उनके पैर भी पकड़ लेते हैं, उनके हाथ भी चूम लेते हैं, हम लोग पैर वैर नहीं पकड़ते, ठीक है, लेकिन हाथ चूमते चूम लेते हैं, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह उनके लिए खाने बनाते हैं और उनके लिए जो है वो कुछ हदीये शदीये भी दे देते हैं और ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ करने को कहते हैं ना तो वो नहीं करते, या किसी चीज से रोकते हैं तो वो हम नहीं रोकते, है ना, ऐसी बात है कि नहीं है? तो हमें एतकाद होता है उनके साथ, लेकिन एतमाद नहीं होता कि उनकी रुकी हुई बात से हम रुक जाएंगे ना तो हमारा फायदा है इसके अंदर, उनकी कहने करीब यानी जिस बात का वो करने को कह रहे हैं अगर वो हम करेंगे तो हमें फायदा होगा, नहीं, हम ये इतना फ्री नहीं करते उनको, इतना फ्री नहीं करते उनको अपनी जिंदगी में, हाँ, लेकिन हम उनके बस हजरत 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 जी हजरत जी, कुछ लोग तो माशाल्लाह सर हिला हिला करके हजरत जी करते हैं, तो ये अकीदत बहुत होती है, एतमाद नहीं होता। हाँ, उसके बदले में ये जो हमारे दत्तूर हजरात जो है ना वो आपको कुछ बोल दें, राइट, या जो भी इस किस्म के जो जो रिसर्चर्स हैं, दत्तूर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये कुछ बोल दें तो उनके साथ बेशक हमें एतकाद ना भी हो, राइट, ऐसे नहीं है कि हम उनको अल्लाह का वली समझते हैं, हम उनको जो है वो कोई बहुत ही परहेजगार और दीनदार और नेक और साले और कुछ नहीं समझते हम उनको, लेकिन एतमाद हम उन्हीं पर करते हैं, है कि नहीं ऐसा, है ना, ये शेख साहब जो है ये बकते रहे बक बक करके, इनका काम और है ही क्या बकने के अलावा, ठीक है ना, लेकिन एतमाद तो हमने दत्तूर साहब के ऊपर ही करना है, एतमाद तो जो है ना वो हमने किसी ब्रांड या किसी चकाचौंध वाले इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही करना है ना, उन्हीं के ऊपर एतमाद करना है, इनको बकने दो जितना बकते रहे, है ना, तो ये है सारा का सारा हमारा मसला, ठीक है, कहने के कुछ और हैं हम, करने के हम कुछ और हैं। तो हिजर महजूरा, हिजर के लफ्जी मानी महफूज जगह के हैं और महजूरन इसकी ताकीद है, ये लफ्ज मुहावरे अरब में उस वक्त बोला जाता है जब कोई मुसीबत सामने हो, ठीक है, उससे बचने के लिए लोगों से कहते हैं कि पना है पना है, यानी हमें इस मुसीबत से पना दो, तो कयामत के रोज भी जब कुफार फरिश्तों को समाने अजाब लाता हुआ देखेंगे, दुनिया की आदत के मुताबिक ये लफ्ज कहेंगे, ठीक है, जैसे दुनिया के इंसानों की आदत होती है इस तरह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस लफ्ज के मानी मनकूल हैं हरामम मुहर्रमन या मुहर्रमन, कि मुराद से ये है कि यानी हराम है और मुहर्रम है, यानी जिस चीज को जो है ना वो बहुत ही यानी दूर दूर रखना चाहिए, मुहर्रम यानी सेक्रेट करके लफ्ज हम जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सेक्रेट चीजें जो होती हैं तो उन सीक्रेट चीजों के साथ बहुत ज्यादा ना फिर एहतियात करनी होती है, आप वहां पे जाकर के हर किस्म की ऑल फॉल किस्म की चीजें नहीं कर सकते, जैसे हरम हरम मुकद्दस जगह है, सीक्रेट जगह है, आप वहां पे जाकर के यानी वो हरकतें जो कि बाहर करते फिरते हैं हरम के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हराम का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ये भी है कि बहुत ही यानी यानी प्योर और साफ सुथरी और मुकद्दस किस्म की जगह, और वो भी चीज जिसको कि अल्लाह ताला ने मना किया है किसी और नुकसान की वजह से मना किया है, ठीक है, जैसे कि सुअर हराम है, अब सुअर सेक्रेट तो नहीं है ना कि इस वजह से वो हराम है, राइट, तो सुअर भी तो हराम है, ठीक है, लेकिन सेक्रेट नहीं है, बहरहाल तो मुराद ये है कि कयामत के रोज जब ये लोग फरिश्तों को अजाब के साथ देखेंगे और उनसे माफ करने और जन्नत में जाने की दरख्वास्त करेंगे या तमन्ना जाहिर करेंगे तो फरिश्ते उनके जवाब में कहेंगे हिजरम महजूरा, यानी जन्नत काफिरों पर हराम और ममनू है, अब जन्नत ऑब्वियसली सीक्रेट जगह है, ठीक है, लेकिन ये इनके ऊपर हराम है। लफ्ज यहाँ पर हिजर इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर इसी हा के ऊपर अगर आप जबर लगा दें तो वो हजर बन जाता है, ठीक है, और हजर का लफ्ज फिर हमारे जो तफसीर क्लास में पहले बात हो चुकी है कि हजर का लफ्ज कुरान में सूरह मुजम्मिल में इस्तेमाल हुआ, वस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, वहां पर जो हजर है उसका बिल्कुल डिफरेंट मानी है, तो एक जेर जबर के डिफरेंस से जो है वो मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, या जो दोस्तों आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट बस, चूंकि ये सारी बातें हुई हैं इतमाद वगैरह के ऊपर और अभी आगे फिर ये चीजें आपको टाइम पास करने के लिए तो नहीं बता रहे, है ना, उम्मीद है कि आप इस बात को समझते होंगे, हिजर पत्थर को भी कहते हैं। हाँ हजर जो है वो डिफरेंट, हजर क्या है वो, हाफिज है हजर था पत्थर के लिए या हिजर था, मेरे सोचे नहीं आ रहा। अच्छा तो जो भी आपको याद है बता दिएगा। तो ये जो बातें हैं ये खाली आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए या यानी टाइम पास करने के लिए तो नहीं बता रहे ना, राइट? उम्मीद है कि आप इसको अमल की नियत से सुन रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिन में तो नियत ही है कि जी हम अमल करने वाले बन जाए, ठीक है? तो इस वजह से ना ये जो है ना एतमाद, किस पर एतमाद करना है, किस पर एतमाद नहीं करना, ठीक है ना, इसको थ्योरी से जरा आगे लेकर के जाए, इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करें। तो जब प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं ना, जब इंसान वाकई सीरियसली किसी चीज को सोचता है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ठीक है, तो जब करने की नीयत से इंसान सोचता है ना, तो फिर आगे फिर बहुत सारी डिफरेंट चीजें खुलती हैं उसके सामने, ठीक है ना, उसके सामने मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, उसके दिल में फिर कुछ इश्कालात आते हैं, कुछ सवालात आते हैं, ठीक है ना, ये उसी शख्स के दिल में आते हैं कि जो कि सीरियसली किसी चीज को सुन रहा होता है, अमल की नीयत से सुन रहा होता है, और जो जो है टाइम पास करने की नीयत से या अपनी जो है वो वोकैबुलरी या अपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बढ़ाने की नीयत से सुन रहा होता है ना, वो ज्यादा उसके उसके जहन में फिर कोई इश्कालात भी नहीं आते, सवाल भी नहीं आते। जैसे कि एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं बैठे हुए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सुन करके भाई यहाँ भी इम्तिहान के लिए तो हमने क्लास अटेंड करनी है, तो बस जल्दी जल्दी सुन लो, नोट्स बना लो, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इम्तिहान में सवाल आएगा तो उसका जो है ना वो जवाब दे करके हम पास हो जाएंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। इस नियत से भी बहुत सारे लोग क्लासरूम में बैठते हैं, और इस नियत से भी बैठते हैं कि हाँ भाई ये नॉलेज जो है ना ये बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नॉलेज है, मैंने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, ठीक है, तो उस वो फिर अपने इश्कालात को दूर करते हैं, अपने जहन में कोई डाउट्स आते हैं उनको क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो एतमाद वाला सिस्टम है तो इसके अंदर फिर कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस भी आने चाहिए जहन के अंदर ना, कि भाई ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे भी तो लोग होते हैं, वैसे भी तो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो एतमाद करेंगे तो फिर क्या मामला होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आना जो है वो इस बात की निशानदेही है, इस बात की अलामत है कि हम वी आर सीरियसली कंसिडरिंग ए माइंड सेट चेंज, वी आर सीरियसली कंसिडरिंग ए माइंड सेट चेंज। हम जहन के अपने तखयलात को, तसव्वुरात को, इरादात को तब्दील करना चाहते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो कैसे करें करेंगे अंदर फिर वो आते हैं कि भाई अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे कि उन्होंने क्या लिखा है, कुछ लोग सोचें कि हमें सब पता होना चाहिए, हर तरह की नॉलेज, तो क्या ये तकब्बुर में आता है, हमें हर चीज पता होनी चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है कि ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो यानी किस पस मंजर में या किस नीयत से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ये भी नीयत हो सकती है कि जी मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इल्म हासिल करना जो है वो सही नीयत से अगर इल्म हासिल करना हो कि अपनी इस्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो इल्म हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे दीन दीन के अंदर तो उसको बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फजीलत अता की गई है, ठीक है, तो इस नीयत से भी तो ये बात की जा सकती है ना कि हमें सब चीज पता हो, लेकिन सब चीज में अब ये कि जी नहीं, जब तक मुझे जो है वो सब चीज पता नहीं चल जाएगी, जब तक मेरा मैं बिल्कुल खुद जो है ना हर बात को नहीं समझ लूंगा, उस वक्त तक तो मैंने किसी पर एतमाद ही नहीं करना है, मुझे तो किसी की बात ही नहीं माननी है, ठीक है, तो अब ये गलत नीयत हो गई, गलत सोच हो गई, ठीक है, क्योंकि हर चीज तो पता होते होते आपको शायद सारी जिंदगी लग जाएगी, और कभी भी शायद ऐसा मामला ना आए कि आपको हर चीज पता लग जाए, तो क्या आप अमल ही नहीं करेंगे, किसी की बात ही नहीं मानेंगे फिर उसके बाद, उस वक्त तक। डिक्शनरी में हिजर का मतलब जुदाई है, हिजर का हजर का मतलब होना चाहिए जुदाई, या तो डिक्शनरी में फॉल्ट है, क्योंकि कुरान के अंदर और ये तफसीर में आप लोग भी तो अटेंड कर रहे थे वो तफसीर मुजम्मिल वाली, उसमें तो हजर का लफ्ज़ है ना, बेफतह हा हजर, किसी चीज को रंजो मलाल और बेजारी के साथ छोड़ना, जुदा होना किसी चीज से, वो हजर का लफ्ज़ है। उसमें कुछ मामलात में खामोशी اختیار کرنے کو کہا کہا ہو پھر بھی زبردستی چاہے کھوج میں لگے. ہاں یہ ایک بری عادت ہے کہ ایسی چیزوں کی کھوج میں لگنا کہ جس کی یا تو آپ کو منع کیا گیا ہے اس کی کھوج میں لگنے سے, تو اس سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا. بلکہ قرآن میں بھی ایک آیت ہے کہ اگر تمہیں وہ چیز یعنی جو چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے وہ اگر بتا دی جائے نا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے. تو جب بڑے منع کر دیتے ہیں تو پھر کھوج میں نہ لگنا جو ہے نا یہ اسی میں خیر ہوتی ہے. اچھا چلیں پھر ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر, یعنی قدمنا کا مطلب ہم وی ریچڈ, ٹھیک ہے, یعنی ہم نے قدم بڑھائے, گویا کہ قدم بڑھا کر کے ہم وہاں تک پہنچ گئے. اب با محاورہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے, من عملن جو ان کے عملوں میں سے انہوں نے کیے تھے, فجعلناہ پھر ہم نے کر ڈالا, ہباء منصورا ایک خاک, ہبا کہتے ہیں خاک کو, ڈسٹ کو, ٹھیک ہے, اور منصورا مطلب بکھری ہوئی اڑتی ہوئی خاک, ٹھیک ہے. تو یہ جو کافر لوگ ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ انہوں نے جو اتنے عمل کیے تھے نا نیکی کے, اس دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کری تھی اور نہ جانے اور کیا کیا قسم کی چیریٹیز اور فلانے اینڈ فلانا فاؤنڈیشن وغیرہ والے جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلینز ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ چیریٹیز کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو کیا کر دیا جائے گا, ہباء منصورا, ٹھیک ہے, فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا, ان کی نیک اعمال کا قیامت کے دن وزن ہی نہیں کیا جائے گا, ان کو ایمان کے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا, اور اینی تھنگ ملٹیپلائڈ بائی زیرو از اکول ٹو زیرو, اور زیرو کو کوئی وزن نہیں ہوتا, زیرو تو ایبسنس آف اے نمبر کو کہتے ہیں نا, رائٹ, زیرو کوئی نمبر ہوتا ہی نہیں ہے, زیرو تو ایک ایبسنس آف اے نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی جو نیکیاں ہیں وہ بالکل ہباء منصورا, جیسے کہ دے ڈنٹ ایون ایگزسٹ, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے نا یہ جو ہیومینٹی فرسٹ اور یعنی یہ جو آج کل کے جو سب سے زیادہ پاپولر دین آج کل بھی بنا ہوا ہے میڈیا کی وجہ سے, رائٹ, لیکن یہ بہت پرانا دین ہے, کوئی نیا دین نہیں ہے جس میں کہتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ, ٹھیک ہے نا, ہم جو ہیں وہ لوگوں کی تو مدد کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں نا, ان کو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, رائٹ. لیکن یہ کیا کیوں ان کو جو ہے وہ کسی کوئی وقت نہیں دی جائے گی, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جس نے کہ اس ہیومینٹی کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ جس نے کہ یہ سارے وسائل پیدا کیے ہیں جن وسائل کے ذریعے سے یہ ہیومینٹی کو وہ ہیلپ کرتے ہیں, رائٹ. ان کے پاس یہ بلینز آف ڈالرز کہاں سے آئے, خود ہی انہوں نے کما لیے, ان کے پاس اتنے انٹیلیجنس تھی کہ انہوں نے مائکروسافٹ کی کمپنی بنائی اور اس مائکروسافٹ کی کمپنی کے ذریعے سے جو ہے وہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز کما لیے, رائٹ, نہیں, یہ خود سے یہ کما نہیں سکتے, ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کو رکھیں سائڈ پر, اللہ کے رسول کو رکھیں جو ہے وہ پسے پشت, ٹھیک ہے, اور کہیں کہ جی میں اپنے اپنے عقل کی بنیاد پر, ٹھیک ہے نا, جو کہ اصل میں کیا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اپنے عقل کی بنیاد پر, اصل میں اپنے نفس کی بنیاد پر, میں اپنے نفس کی بنیاد پر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, بیکاز فار واٹ ایور ریزنس مجھے اچھا لگتا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ یعنی تکلیف سے نکل جائیں اور آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ اور وغیرہ, جو بھی 10,000 قسم کی باتیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس رزق کو جو ہے نا یہ اس کے اوپر یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف اللہ تعالیٰ کے نظام سے ٹکر لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے استعمال کرنا تھا, لیکن یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ اصل خدا کی بات ماننے کی بجائے ان کے اپنے اندر جو ایک جھوٹا خدا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کو نفس کہتے ہیں, یہ اس نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو شرک کہتے ہیں, اس کو ظلم عظیم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ظلم عظیم کے بعد جو بھی یہ अमल बजाहिर कर रहे होते हैं ना, बजाहिर, ठीक है, क्यों कहा बजाहिर, क्योंकि ये जो अमल कर रहे हैं फलानी जगह पे ये वाला काम कर दिया, फलाने कंपनी के अंदर, फलाने कंट्री के अंदर जो है वो ये वेल्स लगा दी और उधर पानी का इंतजाम कर दिया, ये क्या क्या ख्याल है, ये इनकी अपनी कोई, इनकी अपनी कोई सलाहियत होती है जिसकी बुनियाद पर ये सारे काम कर रहे होते हैं? नहीं, अमल तो कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो अमल करते हैं, अल्लाह ताला फाइल हकीकी है, राइट। ये तो काफिर तो क्या अमल करेगा, काफिर तो क्या किसी की मदद करेगा, ये तो ईमान वाले का पक्का अकीदा होना लाजमी है कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह अल्लाह ताला करते हैं। हमें तो अमल करने का इख्तियार दिया ही नहीं गया है, अमल करने का तो हमें इख्तियार दिया ही नहीं गया है कि जी हम जो है वो किसी की मदद कर दें, हम जो है वो किसी की यानी तकलीफ को दूर कर दें, नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ एक जहनी प्रेफरेंस है कि इस रास्ते को प्रेफर करना है कि इस रास्ते को प्रेफर करना है। अमल तो हम कर ही नहीं सकते। जब एक बेहतरीन ईमान वाला, अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन मईयत का रिश्ता रखने वाला वो अमल नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह का इनकार करने वाला कैसे अमल कर सकता है, ये कैसे जो है वो दुनिया के गरीबों की मदद कर सकता है? ये नहीं कर रहा गरीबों की मदद, ये बिल्कुल नहीं कर रहा गरीबों की मदद, राइट। इससे मरूब होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, कोई इनसे जो है वो यानी है, खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी अमल हो रहा है ये अल्लाह ताला करवा रहे हैं। इनका तो मसला ये है कि ये जो है वो अल्लाह ताला की अतात का चॉइस, अल्लाह ताला की अतात को चूज करने के बजाय अपने नफ्स की अतात को चूज कर रहे हैं। दिस इज वॉट मेक्स अ डिफरेंस, अमल डज नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना। असल में ये चॉइस जो है ना ये डिफरेंस मेक करती है कि आप किसकी मान करके बात कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो जितने भी अमल हैं इनको जो है वो हबा अम मंसूरा बना दिया जाएगा कयामत को। तो ये वैसे भी इनकार करते हैं, जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस का ही इनकार करते हैं, ठीक है, कि जी वहां पर तो ये सारे हिसाब किताब वगैरह कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको किस बात का वहां पे अदब मिले भाई, राइट। क्यों आपके हिसाब आपके अमाल को वहां पे तोला जाए, आपने तो उसके एग्जिस्टेंस का इनकार कर दिया था, ठीक है। अस्हाबुल जन्नती, जो जन्नत वाले लोग होंगे, यौम इज़िन, उस दिन, खैरु मुस्तकर्रं व अहसनु मकीला, उनके लिए बेहतरीन ठिकाना होगा, मुस्तकर, करार पकड़ने वाली जगह, करार पकड़ना जिसको कहते हैं कि आप यानी आप मुस्तकिलन क्याम करते हैं, ठीक है, बेस जो जैसे एयर बेस, आर्मी मिलिट्री बेस, तो उनके लिए उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होती है, हवाई मुस्तकर, यानी एयरफोर्स वालों ने वहां पर अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाया हुआ होता है। ये नहीं होता कि भी कुछ दिन के लिए यहाँ पर है फिर वहां से मुंतकिल हो गए किसी और जगह पे अपना बेस मुंतकिल कर लेंगे, नहीं, बेस मीन्स इस्टैब्लिश्ड, इस्टैब्लिशमेंट वहां पर होती है, तो मुस्तकर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर किसी का ठिकाना होता है। वह अहसन मकीला, और बेहतरीन मकील, मकील के लिए दोपहर के आराम की जगह, ठीक है, आगे भी आ रहा है कि कैलूरा से लफ्ज निकला, तो कैलूरा तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के बाद फिर आप वहां से उठ जाते हैं, ठीक है, तो थोड़े ठहरने की जगह भी बेहतरीन है वो, और मुस्तकिल ठहरने की जगह भी के हिसाब से भी वो बेहतरीन जगह है जन्नत। व यौम तशक्कक़ुस समाउ बिल ग़मामी, और अब जो है वो यानी रोज़े हशर यानी मैदान हशर में जो टाइम गुजरेगा उसका तذकिरा कर रहे हैं कि जिस दिन तशक्कक़ुस समाउ बिल ग़मामी के आसमान फट जाएगा, शक हो जाएगा, बिल ग़मामी का मतलब यहाँ पर एक बादल गोया के आएगा और वो आसमान को गोया के फाड़ता हुआ जो है ना वो नीचे आएगा, ठीक है, गमाम बादल को कहते हैं। वह नुज़्ज़िला अल मलाइकतु, और मलाइका उतारे जाएंगे, यानी यहां पर उनके लिए एक्टिव टेंस इस्तेमाल नहीं किया बल्कि पैसिव टेंस इस्तेमाल किया, ठीक है, कि वो उतारे जाएंगे मलाइका, यानी अल्लाह ताला की मर्जी से वो उतार उतारे, ये कोई नहीं है कि कोई फरिश्तों को पकड़ पकड़ करके उतारे उतारेगा, ठीक है, बल्कि अल्लाह की मर्जी होगी कि वो उतारे जाएंगे, ठीक है। नुज़िला अल मलाइकतु तंज़ीलन, यानी लगातार उतरेंगे वो, ठीक है, तंजील का मतलब होता है कि यानी मुस्तकिलन, एक ना कंटिन्यूअसनेस के साथ जो नुजूल होता है, ठीक है, यानी एक एक लंबे अरसे तक जो नुजूल होता है, जैसे कि कुरान का जो नुजूल है वो आसमाने दुनिया से नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक के ऊपर वो कैसे हुआ, वो तंजीलन हुआ 23 साल में, तदरीजन थोड़ा 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 23 साल तक जो है वो कुरान नाजिल होता रहा, जिसके आगे भी तफसील इन्हीं आयात के अंदर आ रही है इंशाअल्लाह। सही चॉइस की तौफीक भी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है, सही चॉइस की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है, ठीक है, लेकिन ये भी इसको भी जो है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि अब आप जो है वो तकदीर के डिस्कशन में अगर चली जाएंगी तो फिर तकदीर के हिसाब से तो फिर सब कुछ ही अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है, और वो फिर एक बिल्कुल ही अलग डिस्कशन शुरू हो जाएगी इस वक्त, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने छोटे छोटे मामलों में हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो यानी अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तौफीक जो है वो अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे वक्त के मुनासिब हाल सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा, ठीक है। तो ये वाली भी इस हद तक जो है वो आपकी बात बिल्कुल आसान सी है। मोमिन भी अगर किसी की मदद करे बगैर अल्लाह की रजा की नीयत से तो वो अमल ही जाया हो जाएगा। क्या जी? वो अमल भी जाया हो जाएगा। खालिस अल्लाह की नीयत होनी चाहिए कोई भी नेक अमल के लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई भी नीयत अमल को जाया कर देगी, क्या बेशक वो मोमिन ही की क्यों ना हो? जी हाँ, इसके ऊपर बहुत तफसील के साथ सूरह इसरा वल मेराज में जो आयात है ना, तो उनकी बहुत यानी एक तो हजरत ने लिखा भी है मारुफुल कुरान के अंदर ही इसकी तफसील, और फिर हमने भी जो है वो कई बयान के अंदर उसके ऊपर बहुत तफसील से बात करी भी है कि मोमिन के भी आमाल जो है वो नीयत की खराबी की वजह से या नीयत की वही गलत होने की वजह से मोमिन के आमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। और सूरह कहफ की भी जो आखिरी आयात हैं तो उनमें भी फिर इस बात को बच्चों के सामने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया गया था, तो हमारी इस बच्चों वाली क्लास चलती है तफसीर की, उसकी भी सबकी रिकॉर्डिंग्स अलहम्दुलिल्लाह वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। इंसान जो भी राह इख्तियार करे उसमें अल्लाह ताला उसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी, जब इंसान नेकी की राह अपने यानी सही नीयत के साथ नेकी की राह को इख्तियार करता है तो उसके ऊपर आगे बढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला उसको देते हैं, ठीक है, यानी एक इस तरह से कि एक नेकी जो है ना फिर दूसरी नेकी को खींचती है, फिर दूसरी नेकी तीसरी नेकी को खींचती है, ठीक है, यानी वन नेकी बिकम्स ए कॉज फॉर सेकंड नेकी, सेकंड बिकम्स ए कॉज फॉर थर्ड नेकी, इस तरह से कर ये सिलसिला चलता रहता है, चाहे गुनाह का हो या नेकी का, उसी की तौफीक मिलती है। हाँ, जो गुनाह करता है और उसके ऊपर फिर तौबा नहीं करता है तो फिर एक गुना जो है वो लीड्स टू दूसरा गुना, दूसरा गुना लीड्स टू तीसरा गुना, तो ये दोनों क्या है, क्या है वो क्या है वो तस्वीर के स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं हम लोग, नजद, हाँ नजद का कॉन्सेप्ट दिया ना अल्लाह ताला ने, हाँ स्नो बॉल्स का कॉन्सेप्ट भी दिया, स्नो बॉल्स का भी वो उसके ऊपर भी बात हुई है, स्लिपरी स्लोप की भी बात हुई है, और नजदैन राइट, वहदैनाहुन नजदैन, कि ये नेकी और गुनाह के रास्ते जो है ये नजदैन है, नजदैन किसको कहते हैं, ऊंचाई की तरफ जाने वाले रास्ते, राइट, नजद जो है ना ये रियाज का कसीम का जो इलाका है ये नजद है, नजद मीन्स ये ऊंचा है, राइट, प्लेटू जिसको कहते हैं जियोलॉजी वाले लोग, ठीक है, तो इसके अंदर आप एक बढ़ते हैं तो फिर आप बढ़ते चले जाते हैं ऊंचाई की तरफ, ठीक है, तो जी ठीक है, वो यौम तशक्कुक समाउ बिल गमामि व नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, अल मुल्कु यौम इज़निल हक्कु लिर रहमान, अल मुल्क वही बादशाही जिसका अल्लाह ताला ने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था, ठीक है, कि अल्लज़ीना क्या था वो, हाँ अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ध, तो यहां पर भी अभी भी सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला की मिल्कियत में है। और उस दिन अल-मुल्कु यौम इज़न, बादशाही उस दिन अल-हक़ साबित होगी, सच्ची होगी, लिर-रहमान, राइट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सिफाती नाम है अर-रहमान, अल्लमल कुरआन, राइट, तो उसके लिए ये साबित होगी। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा, और वो जो दिन होगा वो दिन वो होगा काफिरों के ऊपर इंतहाई मुश्किल, ठीक है। और ईमान वालों के ऊपर कैसा होगा, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाकर के आपको पता चलता है कि जी आपकी फ्लाइट जो है ना वो तो बड़ी डिलेड है और अब पता भी नहीं है कि कब अनाउंस होगी, तो वो जो हमारे जैसे होते हैं सस्ते किस्म के इकोनॉमी एयरलाइन में सफर करने वाले और चीप टिकट खरीदने वाले, तो वो बेचारे पड़े हुए होते हैं, कोई इधर से टेढ़ा पेड़ा पड़ा हुआ है, कोई इधर जो है वो लंबा लेटा हुआ है, कोई किसी तरह से पड़ा हुआ है, कोई किसी तरह से पड़ा हुआ है, और कुछ लोग होते हैं जी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, कुछ लोग होते हैं जी बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, वो ऐसे नहीं पड़े हुए होते, वो होते हैं फर्स्ट क्लास लाउंज में, राइट। बेशक फ्लाइट पता नहीं कब अनाउंस होगी जी, है पता नहीं कितने घंटों के बाद, हो सकता है कुछ और ही आगे जो है वो आतिशबाजी फट गया है, जैसे वो आइसलैंड में फट गया था, राइट। तो लोग दिनों तक जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर पड़े हुए थे, राइट, लेकिन किस तरह से पड़े हुए हैं, किस कैटेगरी के पैसेंजर हैं आप, राइट। अगर आप फर्स्ट क्लास पैसेंजर हैं तो आप जी लाउंज में जाएं, क्या जबरदस्त वहां पे सीट्स होती हैं, क्या जबरदस्त जो है वहां पे खाने आपको मिल रहे होते हैं, क्या वहां पे एयर कंडीशन माहौल होता है बहुत ही, है, और क्या क्या तफरीहात होती हैं उधर, है ना भाई। फ्लाइट तो डिले है, बहुत देर में अनाउंस होगी, लेकिन पैसेंजर पैसेंजर में फर्क होता है ना। तो जो ना मानने वाले पैसेंजर्स होते हैं ना, जो दुनिया की नहीं मानते, तो बेचारे जो है वो सस्ता टिकट खरीदते हैं, पक्के दुनिया वाले नहीं बनते ना, सस्ता टिकट खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो फिर वो माल दौलत की इतनी अजाशी नहीं होती उनके ऊपर, तो वो पड़े हुए होते हैं। फिर उसी तरीके से जो नहीं मानने वाले लोग होंगे ना अल्लाह ताला की, तो कयामत के दिन वो भी इसी तरीके से पड़े हुए होंगे, अलल काफिरीन असीरा, राइट, वो दिन उनके ऊपर बहुत सख्त होगा। वयौम यअद्दुज़ ज़ालिम, और जो जालिम होगा वो उस दिन काट खाएगा, अला यदैही, अपने ही हाथ को काटेगा, उस दिन वो किसी और को नहीं काट सकेगा, दुनिया में काट लो जितना काटना है दूसरों को, कयामत के दिन जो है ना अपने आप को काटोगे, ठीक है। तो अकलमंद लोग जो हैं फिर कहते हैं कि यार इस दुनिया में बेहतर है कि किसी दूसरे को ना काटें, ना वहां पे जाके अपने आप को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरों को अगर काटने की हम बेवकूफी कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ बेवकूफी है, ये कोई हम अकलमंदी नहीं कर रहे। कुछ लोग कहते हैं जी मैं बड़ा सियाणा हूँ, सियाणे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो पंजाबी टोन के अंदर बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग इसी तरह से बात करते हैं, ठीक है, मैंने उसको ऐसे बेवकूफ़ बनाया, उसकी फलानी चीज़ जो है ना वो मैंने जो है वो उसको बेवकूफ़ बना करके हथिया दी, और वो तो ऐसी बुद्धू किस्म का इंसान है, ठीक है। तो हम काटते फिरते हैं ना दूसरों को इस दुनिया के अंदर, बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं ना उनको, तो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, फिर क़यामत के दिन अपने आप को काट रहे होंगे। तो यौम यअद्दुज़ ज़ालिम अला यदैही यकूलू या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ अर-रसूलि सबीला, और वो कहेगा कि ऐ काश काश कि मैंने रसूल के रास्ते को जो है ना वो इख्तियार कर लिया होता, राइट, मैंने पकड़ा होता रसूल के साथ का, मअ अर-रसूलि, ठीक है, रसूल के साथ वाले रास्ते को, रसूल की मईयत वाले रास्ते को, ठीक है, उस रास्ते को पकड़ लिया होता जी, माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी सबीलर रसूल, अखस्तु सबीलर रसूल, रसूल के रास्ते को पकड़ लिया, बल्कि जी यहाँ पे माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया मईयत के साथ, तो मईयत तो भाई यानी किसी लिविंग बीइंग के साथ ही मिलती है ना, तो लिविंग चीज होंगी तो उनके साथ मैयत हासिल होगी, किताबों के साथ तो मैयत नहीं होती है ना। अब ये टॉपिक भी अगले एक दो आयत के बाद ही आ रहा है कि किताबों से हिदायत क्यों नहीं मिलती, किताबों से जो है वो आप को मैयत क्यों नहीं मिलती है, ठीक है ना, वो भी दो आयत के बाद आ रही है तस्वीर उसकी इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर उस दिन जो है वो वही कि जी बस सुस्ती थी, काहली थी, या शैतान आकर के जो है वो बोलता था कि नहीं, ज्यादा फ्री मत होना जा करके इन दीन वालों के साथ, ज्यादा मौलवी बन जाओगे, ज्यादा जो है वो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो बस जरा दूर दूर रह करके इनकी बात सुन लिया करो, और बस उससे ज्यादा मत, ठीक है। तो ये चीज है ना, फिर जो महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि इस तरह से इंसान की इस्लाह नहीं हो सकती। तो वो कहेगा कि काश कि मैंने रसूल के साथ वाले रास्ते को पकड़ लिया होता, या वही लता लई तनी लम अतखज फुलानन खलीला। और ये भी कहेगा कि ए खराबी मेरी, काश कि मैंने उसको अपना दोस्त ना बनाया होता। किसको? रसूल को दोस्त ना बनाया होता? नहीं, रसूल की बात तो पिछली आयत में खत्म हो गई। फुलाने साहब को, फुलाने का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसके आगे तफसीर भी आ रही है कि जितने भी हमने एंटी रसूल टाइप के दोस्त बनाए हुए होते हैं ना इस दुनिया में, इन दोस्तों के होते हुए कुछ नहीं हो सकता, राइट। इस दोस्ती के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो उस दिन जो है ना, जो ये दोस्तियां हमने नहीं छोड़ी होंगी ना, इन दोस्तियों के ऊपर फिर वो अफसोस करेगा कि मैंने काश उस शख्स को जो है वो अपना दोस्त नहीं बनाया होता। असल में मसला तो सारे ये दोस्ती से शुरू होते हैं ना, कि आप किसको दोस्त बनाते हैं। ये सब जो है ना, ये एतकाद भी जो है वो फिर दोस्ती की बुनियाद पर ही होता है, और ये जो मोहब्बत है ये भी दोस्ती की बुनियाद पर होती है, और ये जो एतमाद है ये भी दोस्ती की बुनियाद पर आता है। तो हमारा जो चॉइस होती है ना, कि हमने चॉइस किसको दोस्ती के लिए चूज किया है, ये चॉइस असल में हमारी जिंदगी के फैसले करती है, ठीक है, इसकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं हमारी जिंदगी के। लकद अगलनी अनिल जिक्री बाद इस जानी के तहकीक के उसने तो बहका दिया मुझे, गुमराह कर दिया जिक्र से, नसीहत की बातों से, तस्बीहात पढ़ने से मुझे बहका दिया, नहीं, नसीहत की बातों से उसने मुझे हटा दिया। मैं तो सुनता था नसीहत की बातें, या मुझे तो सुनाते थे नसीहत की बातें, है कोई ना कोई जो है वो भाई साहब मेरे पीछे पड़े रहते थे, कोई ना कोई जो है ना वो मौलवी साहब और पीर साहब और कोई ना कोई शेख साहब, या कोई ना कोई जो है मौलानी साहिबा, खवातीन की बात है, मौलानी साहिबा टाइप की जो चीज़ थी, तबलीगी जमात वाली थी, वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, ठीक है ना। जिक्र नसीहत मुझ तक पहुंचती थी वन वे और दी अदर, अल्लाह ताला पहुंचवाते थे, लेकिन ये जिसको मैंने दोस्त बनाया हुआ था ना, उसने मुझे इससे गुमराह कर दिया। बाद इस जानी, बाद इसके कि वो मुझ तक आ चुकी थी, और अल्लाह ताला जो है वो हुज्जत पूरी करके रहते हैं, पहुंचा करके छोड़ते हैं अल्लाह ताला नसीहत की बात को, ठीक है। लेकिन हमारी जो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स है, ये फिर हमें कहीं का नहीं छोड़ती। वकान शैतान लिल इंसान खजूला, और शैतान इंसान के लिए खजूल है, यानी दगा देने वाला है, धोखा देने वाला है। वकाल रसूलू, और रसूल कहेंगे, या कहा रसूल ने, या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआने क़ुरआना महजूरा, के बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को महजूरन के तौर पर लिया। महजूरन वही, हाँ, हिजरम महजूरा जो पीछे था, हजरम महजूरा, तो महजूरन का मतलब जिस चीज को आप छोड़ दें, तर्क कर दें ना, ठीक है, तो एक तर्क की हुई चीज के तौर पर इस कुरान को इन्होंने डील किया, इस कुरान के साथ ये रवैया रखा, ठीक है। जैसे कि बदकिस्मती से हमने भी यही मामला किया हुआ है। और कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, और इसी तरीके से हमने हर नबी के लिए बनाए दुश्मन मुजरिमों में से, ठीक है, यानी जो मुजरिमीन होते हैं, काफिरीन जो होते हैं ना, तो वो फिर नबी के दुश्मन होते हैं। वह कफा बिरब्बिका हादियं व नसीरा, और काफी है तेरा रब हिदायत देने के लिए और मदद करने के लिए, ठीक है। तो अब जो है ना, मौलवी साहब की जरूरत रह गई इस आयत के बाद, तो ना पीर साहब की जरूरत रह गई, ना शेख साहब की जरूरत रह गई, ना उस्ताद साहब की जरूरत रह गई, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला काफी है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी मामले को आसान फरमा दिया, ठीक है, कि नसीरन, राइट, अल्लाह ताला मदद के लिए भी काफी है ना। अगर हिदायत के लिए अल्लाह ताला काफी है, और तुम्हें किसी उस्ताद की और शेख की और उसकी जरूरत नहीं है, तो मदद के लिए भी तो अल्लाह ताला काफी है ना। तो क्यों कहते हो अम्मी प्लीज हेल्प मी, अब्बू प्लीज हेल्प मी, भाई साहब प्लीज हेल्प मी, अमरीका साहब प्लीज हेल्प मी, चाइना साहब प्लीज हेल्प मी। तो जब हिदायत के लिए मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, तो मदद के लिए भी चाइना की और अमेरिका की जरूरत नहीं है, अम्मी अब्बू की जरूरत नहीं है, है ना। तो बात एक करो ना, फिर दो मुख्तलिफ बातें क्यों करते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से ना मदद के लिए तुम्हें इंसानों की जरूरत पड़ती है ना, राइट, वो असबाब के दर्जे में होते हैं, उसी तरीके से हिदायत के लिए भी असबाब के दर्जे में इन सब लोगों की जरूरत पड़ती है। तो दोगलापन नहीं चलता फिर, ठीक है, दो नंबरी जिसको कहते हैं ना, 420 दो नंबरी, ये नहीं चलती, ठीक है। तो ये तो हो गया तर्जुमा, और टाइम भी हमारा क्लास का खत्म हो गया है। किसी को अगर कोई सवाल करना हो तो उसके लिए हम रुक जाते हैं, वरना ऑफिशियली क्लास जो है वो खत्म समझे। किसी ने यहाँ पर एक सवाल लिखा है मर्दों की तरफ, तो वो पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। एक तो ये उर्दू में इधर से शुरू करूँ कि इधर से शुरू करूँ। बुजुर्गान दीन और उलमा की मिसाल ऐसी है कि बोगियां और वो अपने मंजिल की तरफ चल रहे हैं, तो हम भी उनके पीछे। फर्स्ट क्लास गालिबन हजरत अशरफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मल्फूजात में है या कहीं और पढ़ा है कि बोगी लगा दें तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो हम भी पहुंच जाएंगे, मतलब उनके साथ बिल्कुल लग जाएं, उनकी हिदायत पर चलें। जी कुदरतन आपने शायद वो क्लास नहीं ली होगी, चंद क्लासों पहले जो है वो ये बोगी वाली मिसाल भी आई थी, शायद वो दूसरी या तीसरी क्लास की उमदा मुबारक की। तो हाँ बिल्कुल, हमारे मशाइख ने इसी तरीके से बात को समझाया है, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो असल मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे, और हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। वाखिर दुआ अन अलहम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।